माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन सुतबर हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुता गौरा हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की दो तीन रविवार पहले यहां मंदिर में एक उत्सव मनाया गया था, आपको याद है कौन सा उत्सव? चिड़ा दही उत्सव। चिड़ा दही खा के आपको संतुष्टि मिली? तो उस समय हमने रघुनाथ दास गोस्वामी इनके चरित्र का वर्णन किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत महान कृष्ण भक्त थे, जो करीब 500 साल रहते थे, पहले रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, महाप्रभु की अनुकंपा उनको प्राप्त हुई थी और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से वो एक थे। लेकिन उस रविवार को, हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के बारे में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई, इसलिए आज उस कथा को जारी रखेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो उस रविवार को जो चर्चा की थी संक्षेप में हम फिर से दोहराएं। रघुनाथ दास, उनका जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था बंगाल में। उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार। गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरण्य मजुमदार बड़े जमींदार थे और वहां के नवाब के लिए कर वसूली भी करते थे, लोगों से बहुत पैसा था। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो वो करोड़पति कहलाते थे। लेकिन इतने अमीर परिवार में जन्म लेने के बाद भी रघुनाथ को बिल्कुल उस ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ा। बचपन से ही वो भगवान की भक्ति की ओर आकृष्ट हुए। उनके गुरु यदुनंदन आचार्य और उनके गुरु के मित्र बलराम आचार्य उनको हमेशा कृष्ण कथा सुनाते रहते और एक बार उन्होंने उनकी मुलाकात हरिदास ठाकुर से की। हरिदास ठाकुर का प्रभाव बहुत तीव्र रहा बालक रघुनाथ के हृदय के ऊपर और कम उम्र में ही रघुनाथ ने पहली बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। 10 दिन महाप्रभु के साथ में रहे। आप में से जो पहली बार आए हैं, नए आए हैं, आपको फिर से बताएं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि 500 साल पूर्व प्रकट हुए थे। और ऐसे महाप्रभु का 10 दिन संग प्राप्त करने के बाद वो फिर से लौटकर आए। दोबारा एक बार शांतिपुर में, जो कि अद्वैत आचार्य का निवास स्थान था, वहां पर महाप्रभु का दर्शन उनको हुआ। उस समय रघुनाथ ने अपने संसारी जीवन को त्यागने की इच्छा प्रकट की चैतन्य महाप्रभु के सामने, क्योंकि गोवर्धन मजुमदार और उनके पत्नी ने देख लिया था कि इस बालक में वैराग्य के लक्षण बहुत तेज दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह अच्छा होगा कि जल्दी से इसका विवाह कर ले, और विवाह कर दिया था। और जब वो दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो रघुनाथ ने प्रार्थना की कि मुझे संसार को त्यागना है, आपके साथ चलना है। तो महाप्रभु ने कहा था कि मर्कट वैरागी मत बनो। मर्कट वैरागी मतलब बंदर जैसा वैराग्य मत करो। बंदर जंगल में रहते हुए भी, जहां उसके कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं, कोई कपड़े नहीं, केवल फल फूल खाता है, बाहरी दृष्टि से बहुत वैरागी लगता है, लेकिन मन में बहुत इंद्रतृप्ति की इच्छा रखता है और विषय भोग बहुत करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मर्कट वैरागी नहीं बनो, अपने संसार में रहो, संसार को चलाओ और साथ साथ कृष्ण की भक्ति करो। और इस प्रकार से रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया। उस दौरान एक तुर्की चौधरी का मतभेद रघुनाथ के पिता से हुआ और बहुत अच्छी तरह से रघुनाथ ने उस झगड़े को मिटा दिया, क्योंकि उनका स्वभाव इतना सौम्य था, नम्र था, हसमुख चेहरा था, मासूम चेहरा था कि कोई भी उनको देख लेता तो तुरंत उससे प्रेम करना शुरू कर देते थे। और उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता चर्चा करने लगे कि कैसे इसको घर में रखा जाए, क्योंकि रघुनाथ बार बार घर छोड़ के भाग के भागा करते थे और बार बार गोवर्धन मजुमदार के सैनिक उनको पकड़ के लेकर आते थे घर में। तो माता ने कहा कि इसको रस्सी से बांध के रखना चाहिए। पिता ने कहा कि रस्सी से बांधने से क्या फायदा, जब इसके पास सारे ऐश्वर्य वगैरह हैं, ये उसको बांध के नहीं रख रहे हैं तो केवल रस्सी से आदमी को बांध नहीं सकोगे। ये आदमी पागल हो गया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसके ऊपर आ गई है, इसलिए आपके और हमारे बंधन इसको बांध नहीं सकते हैं। बाद में चिड़ादही महोत्सव मनाया गया नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार। रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली और उसके बहुत ही शीघ्र बाद चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पुनः हुआ। उनको मौका मिला, घर छोड़ के फिर से वो भाग गए और जगन्नाथपुरी पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में आए। तो कथा वहां समाप्त हुई थी, तो कथा यहां से आज से जारी रखेंगे। तो जब रघुनाथ वहां पहुंचे, 12 दिन लगातार वो पैदल चल के आए थे बंगाल से जगन्नाथपुरी, और इन 12 दिनों में केवल 3 दिन उनको कुछ भोजन मिला था, बाकी दिन उपवास, कुछ खाना कुछ प्रसाद नहीं मिला उनको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी, इसलिए उस समय रघुनाथ को अपने शरीर के कष्टों का कोई ध्यान ही नहीं रहा। हम देखते हैं कि मन कभी किसी एक चीज पे एकाग्र हो जाता है तो शरीर के कष्ट को मन देखता नहीं है। भौतिक चीजों के लिए भी हम देखते हैं, जब व्यापारी होते हैं कभी कभी दिन रात मेहनत करते हैं, और जब व्यापार के समय कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता है कि भोजन खाया है कि नहीं खाया है। जब भौतिक चीज के प्रति ऐसे हो सकता है तो आध्यात्मिक वस्तु के लिए क्यों नहीं हो सकता, और तीव्रता से हो सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा और इस समय उन्होंने रघुनाथ को स्वीकार किया और कहा कि रघुनाथ, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मैं समझता हूं कि तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हुई है, क्योंकि तुमने ये भौतिक आसक्तियां तोड़ दी हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और आज तुमने ये कर दिया है। तो रघुनाथ दास ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, कृष्ण कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे आपकी कृपा मिली है, इसलिए मैं आज यहां तक आ पहुंच सका हूं। और फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि देखो रघुनाथ, तुम्हारे पिता मेरे पिता और मेरे दादा के मित्र थे, इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो हम सगे संबंधी हैं। तो सगे संबंधियों के बीच में कभी कभी मजाक की बातें भी हुआ करते हैं, तो मैं थोड़ी मजाक की बातें तुम्हारे साथ करूंगा। देखो, जो भौतिक जीवन है वो एक गड्ढे के बराबर है जिसमें नाना प्रकार के गंदी चीजें भरी हुई होती हैं, और तुम्हारे जो माता पिता हैं वो ऐसे कीड़े हैं जो कि उस गड्ढे में पड़े हुए थे, क्योंकि हालांकि वो वैष्णव है लेकिन भौतिकवादी वैष्णव है, हालांकि बड़े दान भी देते थे लेकिन शुद्ध नहीं, विषय आसक्ति बहुत तेज थी उनके मन में, और तुम इस गड्ढे में से बाहर निकल आए, इसलिए कितनी बड़ी कृपा हुई भगवान कृष्ण की तुम्हारे ऊपर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का स्वागत किया और फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि उनके निकट के पार्षद थे, उनको कहा कि स्वरूप, अभी मैं रघुनाथ दास को तुम्हारे हवाले करता हूं, कृपया आज से तुम इसके शिक्षक बनो, इसको मार्गदर्शन करना, इसको प्रशिक्षण देना और इसका देखभाल करना। रघुनाथ, आज से तुम अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हवाले हो गए हो। अभी से मेरे तीन रघुनाथ हुए, वैद्य रघुनाथ, भट्ट रघुनाथ और दास रघुनाथ। तो तीन रघुनाथ हो गए चैतन्य महाप्रभु के। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर को बहुत प्रसन्नता हुई रघुनाथ दास गोस्वामी को देखकर। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा कि अरे गोविंद, देखो 12 साल पैदल चल के, 12 दिन पैदल चल के कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कपड़े फटे हैं, ऐसी बुरी अवस्था है रघुनाथ की, इसके लिए कोई प्रसाद की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ से कहा कि जाओ स्नान कर लो समुद्र में, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो और यहां आ जाओ, और गोविंद तुम्हें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देगा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास स्वामी स्नान करके आए, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए। फिर गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को, क्षमा कीजिए, रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद दिया। और ऐसे 2-4 दिन चलता गया। जैसे कोई भक्त पहले आश्रम में पहली बार आता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रसाद वगैरह देते हैं, फिर बाद में सब वैसे दूसरों को जैसे होता है। तो अभी अभी आए थे ना रघुनाथ दास, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का निजी महाप्रसाद उनको खिलाया गया। 2-4 दिन अच्छी तरह से देखभाल किया गया। और फिर 2-4 दिन जब समाप्त हो गए तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से वहां प्रसाद लेने के लिए नहीं आए। फिर वो सिंह द्वार में गए। जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक सिंह द्वार है, कई द्वार हैं जगन्नाथ मंदिर के, उनमें से एक है सिंह द्वार। और वहां पे प्रथा है कि जो भी आदमी भूखा है, रात का जब पुष्पांजलि होता है अंदर मंदिर के, उसके बाद में जो जगन्नाथ जी के सेवक बाहर आते हैं, अगर कोई वहां बाहर भिखारी हो, कोई भिक्षुक हो, कोई भी हो, अगर भूखा है तो उसके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए सिंह द्वार के पास खास करके रात में अगर कोई जाएंगे तो वो देखेंगे कि बहुत सारे लोग वहां खड़े रहते हैं भिक्षुक। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास भी वहां पर जाके खड़े रहने लगे। और ये खबर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पहुंचाई चैतन्य महाप्रभु को। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो कहने लगे कि हाँ, रघुनाथ ने जो किया है वो योग्य है, क्योंकि अभी वो वैरागी बन गया है, अभी वो सन्यासी बन गया है, और सन्यासी के लिए यही चाहिए कि उसे दिन भर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए सबसे, और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और अगर कोई वैरागी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। वैरागी को चाहिए कि अपनी जिह्वा के लिए वो ज्यादा प्रयत्न नहीं करे। जो दैव से उसको फल फूल आदि शाक वनस्पति जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दिन भर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करते रहना चाहिए। केवल अपने जिह्वा के लालसा के लिए इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो हम सबके लिए भी बहुत जरूरी है। जिह्वार लालसाए जे इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। महाप्रभु ने कहा कि जो जिह्वा के लालसा से, मतलब जिह्वा की लालसा क्या होती है, स्वादिष्ट व्यंजन चखने की, ये लालसा जिह्वा की होती है। जिह्वार लालसाए जे इति उति धाय, मतलब जो जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर भागते रहता है, कभी इस होटल में, कभी वहां, कभी ये खाने के लिए, कभी वो खाने के लिए, तो क्या होता है, शिष्णोदर परायण, कृष्ण परायण नहीं होता वो, शिष्णोदर परायण, शिष्ण मतलब जनेन्द्रियां, उदर मतलब पेट, वो अपने जनेन्द्रिय और पेट का गुलाम बन जाता है, कृष्ण नहीं पाए, और ऐसे अवस्था में वो व्यक्ति कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता, भक्ति मार्ग में वो प्रगति नहीं कर सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए इस खबर को सुन के। तो वहां पर रघुनाथ दास खड़े रहते अन्य भिक्षुकों के संग में और भिक्षा मांगते, और जो भी सेवक आते उनको प्रसाद दे देते, और इस प्रकार से काफी कई दिन बीत जाते। एक बार ऐसे हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पहले एक प्रश्न किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी की विशेष बात यह थी कि वो कभी चैतन्य महाप्रभु के साथ डायरेक्ट बात नहीं करते थे, सीधा बात नहीं करते थे, हमेशा स्वरूप दामोदर के माध्यम से बात करते थे। अगर उनको कुछ पूछना था तो वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते थे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर चैतन्य महाप्रभु को पूछते थे। ये एक मर्यादा थी, वो ये अपने आप को योग्य नहीं समझते थे कि मैं सीधे जाकर महाप्रभु के सामने कोई प्रश्न करूं। तो बड़े नम्र भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर से प्रश्न किया कि हे गोस्वामी जी, मैंने तो संन्यास ले लिया, मैंने तो मेरे घर संसार को त्याग दिया, लेकिन किस लिए मैंने यह किया मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपया ये मुझे बताइए। तो स्वरूप दामोदर ने समझ लिया कि ये चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहता है, तो चैतन्य महाप्रभु के पास ले गए और महाप्रभु से कहने लगे कि रघुनाथ दास का ये एक प्रश्न है कि उसने संन्यास लिया है, घर बार सब त्याग दिया है, लेकिन किस उद्देश्य से, उसके क्या कर्तव्य हैं, ये जानना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु हंसे और कहने लगे कि अरे रघुनाथ, मैंने तो तुम्हें स्वरूप दामोदर के हवाले कर दिया है, वही तुम्हारे प्रशिक्षक हैं, जो भी प्रश्न चाहिए तुम्हारे पास हैं, उनका उत्तर देने के लिए स्वरूप दामोदर जो है वो पूरी तरह से समर्थ हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तो मैं संक्षेप में इसका उत्तर देने के लिए प्रयत्न करता हूं, ध्यान से सुनो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 3 श्लोक कहे रघुनाथ दास गोस्वामी से, और ये 3 श्लोक हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम में कथा ना सुनिबे, ग्राम में वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाएबे और भालो ना पोड़ीबे। ये पहला आदेश। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा मतलब क्या है, गांव की कथा, गांव की कथा मतलब प्रजल्प, केवल अरे उस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या चल रहा है, किसका किसके साथ झगड़ा हुआ, किसका किसके साथ बनता नहीं है, कौन कितना पैसा बनाता है, किसके व्यापार में क्या चलता है, किसके घर में क्या चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करना, उसकी निंदा करना, यानी संसार की बातें, फिजूल की बातें, व्यर्थ बातें जिनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। ज्यादातर जो संसार में बातें चलती हैं वो सब ग्राम्य कथा ही है, चाहे वो कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े राजकारण राजनीति में होने वाले नेता लोग हो, कोई भी हो, बड़े बड़े करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति हो, सब लोग भौतिक चीजें ही के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों के घर में आप जाएंगे, ऐसे कितने लोगों से मिलेंगे कि जो आपको केवल भगवान कृष्ण के बारे में याद दिलाएंगे। अभी आप मंदिर में आते हैं लेकिन बाहर संसार से भी आप काफी संपर्क है, आप कितने सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके व्यवसाय में, आपके समाज में, आपके घर के पास में, रिश्तेदारों में। तो सोचिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो ग्राम कथा नहीं करते हैं, सोचिए बहुत कम होंगे, शायद कोई भी नहीं भक्तों के अलावा, और भक्त को आप यहां आकर मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ग्राम कथा न सुनिबे, कहिबे के पहले सुनिबे कहा। ठीक है, कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो कोई प्रजल्प करता नहीं हूं, लेकिन सुनते तो हो ना, कोई आके बताता है अरे प्रभु जी पता है वो ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा हाँ, तो और बोलो, हम बोलेंगे नहीं कुछ, लेकिन सुनने के लिए मसालेदार विषय कोई होते हैं, हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, बहुत उत्कंठा होती है ये सब सुनने के लिए, किसने क्या किया, किसके घर में क्या समस्या हुई। आजकल टेलीविजन के सीरियल भी यही है, ग्राम्य कथा, कौन से सास और बहू के बीच में झगड़ा है, क्या है, सब आजकल यही चलता है ग्राम्य कथा। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ग्राम्य कथा न सुनिबे, इसका मतलब है देखना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता है उसे केवल भगवान के विषय में बोलना चाहिए, ग्राम्य कथा सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई आए भी, अगर कोई भक्त भी आए हमारे पास और वो कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, तो हमें नम्रता से कहना चाहिए, प्रभु जी माता जी अभी हम कुछ भगवान के बारे में बात करते हैं, ये सब विषयों से कोई मजा नहीं है। खास करके इधर से कुछ सुनना उधर बोलना गांव में यही चलता है। पहले हम सोचा करते थे बहुत साल पहले, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था कि गांव में कितना अच्छा वातावरण हुआ करता था, गांव में लोग केवल सुबह शाम भगवान का भजन करते थे। लेकिन फिर थोड़े साल पहले जब गांव में अंदर अंदर जाने लगे, फिर समझने लगे कि गांव में भी कितना राजकारण होता है, कितना पॉलिटिक्स होता है गांव में भी, बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को बहुत समय रहता है, हरेक को मालूम होता है कि दूसरे के घर में क्या चलता है, कौन क्या, किसका झगड़ा किसके साथ होता है। इतना ग्राम्य कथा, इतना ग्राम्य कथा कि सीमा के बाहर, हर जगह आजकल गांव में भी शहरों में भी बहुत ये हद से बाहर हो गया है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का स्वभाव बन गया है, ऐसे लोगों का संग कर करके बचपन से एक स्वभाव बन गया, दूसरों के बारे में चर्चा करना, दूसरों की निंदा करना। और यही स्वभाव हम भक्ति मार्ग में लेकर आते हैं और वो आदतें जल्दी से छूटती नहीं है, तो वही पुराने आदतें हम भक्तों के संग में भी करते हैं, किसी दूसरे भक्त की निंदा करते हैं, अरे वो भक्त के बारे में हम कुछ ग्राम्य कथा करते हैं। तो जो भक्त सिंसियर हैं, जो वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमारे पास आए कोई ऐसे मसालेदार खबर लेकर दूसरों के बारे में, तो हमें क्या करना चाहिए, हाथ जोड़कर कहना चाहिए, प्रभु जी नहीं, हमें कुछ सुनना नहीं है, बात नहीं करना है, ऐसे विषयों में हमें रुचि नहीं है। और खास करके हमने देखा है कि सबसे खतरनाक ग्राम्य कथा कौन सी होती है, कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आके बोलता है कि आप जानते हैं कि आपके बारे में वो व्यक्ति क्या बोलता है, उस व्यक्ति ने मेरे को आपके बारे में ऐसे बोला है, अच्छा उसने ऐसे बोला है, फिर वो काड़ी लगा के पीछे हो जाता है, पीछे होके फिर दोनों के बीच में मजा क्या होता है वो देखता है। ये सब ग्राम्य कथा के उदाहरण है, और इसके वजह से कितना उत्पात समाज में होता है, एक परिवार में, एक समाज में, एक गांव में, शहर में, सारे दुनिया भर में, देशों के बीच में भी झगड़े ऐसे ही होते हैं, किसने क्या बोला, किसके बारे में बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। इसलिए ग्राम्य कथा ये बहुत खतरनाक चीज है, एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक चीज है ये। इसलिए जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे व्यर्थ बातों से सख्ती से दूर रहना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु का पहला आदेश रघुनाथ दास गोस्वामी को था, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं उपदेश अमृत के तात्पर्य में कि जैसे मेंढक होता है वो कौ 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 आवाज करता है, तो ग्राम्य कथा उस प्रकार का आवाज है। तो जब मेंढक ऐसे आवाज करता है तो केवल सांप आकर उसको खा जाता है, उसका फल यही होता है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति ग्राम्य कथा में अपना जीवन बर्बाद करता है, तो वह केवल मृत्यु को निमंत्रण देता है, मृत्यु रूपी सांप उसको आके खा जाता है, निगल लेता है। इसलिए मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है। आयुर हरति वैपुंसाम उद्यन अश्चम्त यन असो तस्यर्थ यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत में कहा है, कि हर एक दिन जैसे सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है, तो ऐसे हर एक दिन से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं कर रहा है उसका एक दिन हरण हो जाता है, उसकी आयु हरण हो जाती है। आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असो। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा करता है और अपना जीवन इस प्रकार से बिताता है उसकी आयु हर नहीं ले जाती। उसकी आयु क्या होती है? वो अमृत अवस्था की ओर बढ़ता है। भगवान के धाम के में जाने के लिए एक दिन और वो करीब आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम केवल भगवान के बारे में चर्चा करें, मंदिर की सेवा के बारे में चर्चा करें, कोई जरूरी बातों करें, दूसरी बातें हम बिल्कुल नहीं करें। दूसरा आदेश महाप्रभु का था, भालना खाइबे भालना पोरीबे। भालना खाइबे मतलब कोई अच्छी अच्छी चीजें मत खाना। भक्तों को हमेशा ये भी सावधान रहना चाहिए कि हमें जिह्वा का गुलाम नहीं होना चाहिए। साधारण प्रसाद से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भगवान की योजना से आएगा उससे संतुष्ट रहेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन प्रसाद के नाम में अगर हर रोज हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन चखने को प्रयास करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना नष्ट हो जाएगी। इसलिए खास करके जो भक्त हैं और भक्तों में से खास करके जो वैराग्य का जीवन अपना रहे हैं उनको और भी जरूरी है कि वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों से आसक्त नहीं हो जाए। भालो ना पुरी बे, तीसरी बात, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा। आजकल सब जगह इतना ये बड़ा इंडस्ट्री बन गया, उद्योग बन गया है, करोड़ों करोड़ों रुपए का उद्योग बन गया है। नए नए फैशन निकलते हैं रोज, नए नए प्रकार के कपड़े, कमीज, पैंट, टाई, सूट, ये वो, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये शरीर क्या है? ये शरीर में कोई सौंदर्य नहीं है। ये शरीर में क्या है? केवल ये एक चमड़े का थैला है जिसमें नाना प्रकार की चीजें, खून, मांस सब भरा हुआ है। ऐसे 11वें स्कंद में 10वें स्कंद में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत का, और वास्तव में सत्य है। तो अगर किसी के पास कोई थैला हो उसको बहुत सजाते हैं क्या? नहीं। तो इस शरीर को, इस थैले को क्यों इतना संभाल के रखना चाहिए? जितना इसके संरक्षण के लिए चाहिए उतना पहनना चाहिए, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से बचाने के लिए, एक लज्जा की दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उतना ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारी चेतना इसी में रहेगी कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा हमें सुंदर दिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके नए नए कपड़े हमेशा लाने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। साधारण कपड़े हम पहन सकते हैं। भक्त को किसी को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब देखते हैं तो हमारे कपड़ों को देखकर वो दोते, अरे कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, भगवान ऐसे कभी नहीं देखते। और आखिर हमें क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान हमारे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बाहर कोई समाज में पार्टी में जाए, बड़ा टिप टॉप सूट पैंट में जाए, कोई वाह वाह करे, वो बात अलग है। लेकिन भक्तों के समाज में कोई वाह वाह नहीं करेगा, उल्टा कोई ऐसे कपड़े पहन के आएगा तो भक्त उनको भगा देंगे, बोला अच्छे धोती कुर्ता पहन के आ जाओ। तो इसी तरह से भक्तों को चाहिए कि सरल पोशाक पहने। पोशाक इसका उद्देश्य क्या है? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? एक तो शरीर के संरक्षण के लिए, दूसरी बात है लज्जा की दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य समाज में ही कपड़े पहनते हैं। आपने किसी कुत्ते बिल्ली को देखा है सूट पैंट पहनते हुए? नहीं। उनको कोई लज्जा की बात पशुओं में नहीं है, लेकिन मनुष्य समाज में लज्जा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने लज्जा को रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। और तीसरी बात, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं दूसरों को भगवान के बारे में याद दिलाने के लिए और अपने आप को भी याद दिलाने के लिए। इसलिए जब हम तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हम दूसरों को याद दिलाते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, वो लोग भी कृष्ण का स्मरण करते हैं। और जब हमने भक्तों का पोशाक पहना है तो फिर हम कुछ इधर उधर की काम भी नहीं कर सकते। अगर कोई भक्त अचानक सोचे अरे ये अच्छा सिनेमा थिएटर है चलो अंदर जाते हैं, फिर अरे मेरे कपड़े पहने हुए भक्त कपड़ा, ऐसा नहीं जा सकता मैं, कम से कम उसके ऊपर थोड़ा बंधन हो जाता है। तो अपने आप के लिए भी एक भक्ति के लिए सुरक्षा हो जाती है और दूसरों को भी भगवान का याद दिलाता है। तो कपड़ों का ये उद्देश्य है बस, इससे ज्यादा कोई और कपड़ों का काम नहीं है। फैशन में जाना, ज्यादा पैसे खर्च करना, कोई बात कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिए। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमानी मानदा होना कृष्ण नाम सदा लोइबे। अमानी मानदा होना, अमानी मतलब अपने आप को अपने आप के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरी पूजा करें, मेरा वाहवा करें, मेरा सत्कार करें, मेरा फोटो छपे अखबार में। लेकिन महाप्रभु कहते हैं अमानी न होना, नहीं होना। मानदा मतलब दूसरों को मान देने के लिए सदा तैयार होना, ये बहुत जरूरी है। दूसरों को सम्मान देने के लिए भक्त हमेशा तत्पर आतुर रहता है, लेकिन अपने आप के लिए कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है। और फिर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नाम सदा लोइबे, हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहना 24 घंटे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे, फिर वृंदावन में रह के मन में ही राधा कृष्ण की सेवा करते रहना। हम लोग तो सब जाकर वृंदावन में रह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने घर को हम वृंदावन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन वो स्थान है जहां कृष्ण भगवान निवास करते हैं, जहां सभी लोग केवल कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के अलावा कुछ उनको पता नहीं है। जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है वो वृंदावन है। तो अगर हमारा घर भी हमने ऐसे बनाया, हमारे घर भगवान के तस्वीर हुए, कुटुंब के सहित हम भगवान की पूजा करते रहे, कुटुंब के सदस्यों के साथ बैठकर हम भजन करें, कीर्तन करें, जप करें, कुछ कथा करें, कुटुंब के साथ में हम मंदिर में आए, ये भी वृंदावन है। गोकुल आनंद, राधा गोकुल आनंद यहां पर विराजे हैं। तो यहां पर आकर हमें प्रशिक्षण मिलता है। ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय है जहां हमें प्रशिक्षण मिलता है भक्ति मार्ग में, कैसे अच्छा भक्त बनना है, कैसे अपने घर को वृंदावन बनाना है। ये मार्गदर्शन हमें मंदिर में आके मिलता है। इसलिए मंदिर में आना, यहां के वृंदावन के वातावरण को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, फिर अपने घर को हम वृंदावन बना पाएंगे। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा जो हमारे सारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का सार है, सारे वेदों का सार है। और वो कौन सा श्लोक है? त्रिनादपि सुने चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हे रघुनाथ, अगर तुम सदा हरि कीर्तन करना चाहते हो तो ये चार चीजें याद रखो। तृण से भी ज्यादा नम्र रहो, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील रहो, अपने आप कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करो और दूसरों को सम्मान देने के लिए हमेशा तैयार रहो। इस प्रकार से केवल 3 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिए कि वैरागी का जीवन, भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन आदेशों को ग्रहण किया अपने हृदय से और पालन किया बहुत सख्ती से। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन इतना अद्भुत था, उनका वैराग्य इतना अद्भुत था कि इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य का नकल कोई करता कोई करने का प्रयास करे तो निश्चित ही उसकी बहुत कम समय में मृत्यु ही हो जाएगी, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के संग की इतने धूमधाम से यहाँ रथ यात्रा मनाई जाती है और लाखों लोग आते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग किस प्रकार से संकीर्तन करते हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए इसको देखकर और महाप्रभु के प्रभाव को देखकर विस्मित हो गए। उस समय रघुनाथ को अद्वैत आचार्य की कृपा भी आई मिली। चातुर्मास के समय हर साल बंगाल में रहने वाले जो वैष्णव हुआ करते थे वो चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी आया करते थे। तो उस समय शिवानंद सेन जो वहां के वैष्णवों के नेता थे, लीडर थे पार्टी के, उनकी मुलाकात रघुनाथ दास से हुई। तो उन्होंने कहा कि अरे रघुनाथ, तुम्हारे पिता ने कई लोगों को भेजा था हमारे पास, 10 लोग आए थे तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन हमने कहा कि हमने रघुनाथ को नहीं देखा है, वो बंगाल में हमारे पास आए थे ढूंढने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने खबर दी कि गोवर्धन मजुमदार इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रघुनाथ कहाँ है। और फिर शिवानंद सेन अन्य वैष्णवों को लेकर वापस बंगाल चले गए। जब गोवर्धन मजुमदार को पता चला कि वैष्णव सारे जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटकर आए हैं, तो उन्होंने एक दूत भेजा शिवानंद सेन के पास पूछने के लिए कि क्या आपने एक सन्यासी को देखा है जिसका नाम है रघुनाथ। तो शिवानंद सेन ने उस दूत से कहा, कौन नहीं जानता है रघुनाथ दास गोस्वामी को, वो तो बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हैं वहां के, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त की है और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उनकी तरह कौन वैरागी हो सकता है। वो केवल फटे हुए थोड़े बहुत कपड़े पहन और सिंह द्वार के बाहर खड़े होकर वो भिक्षा मांगते हैं और जो भी हाथ में आता है वो ग्रहण करते हैं, और अगर कभी कुछ नहीं मिलता तो कुछ नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं। इस प्रकार से वो अपना दिन बता रहे हैं। जब गोवर्धन मजुमदार तक ये खबर पहुंची तो वो बहुत दुखी हो गए कि अरे रे, मेरा बेटा अभी इतना वैराग्य का जीवन बिता रहा है, कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, क्योंकि माता पिता को सबसे बड़ी चिंता बच्चों के बारे में यही रहती है कि वो खाते पीते हैं कि नहीं ठीक से, बाकी कुछ जो भी हो। तो इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता माता चाचा वगैरह सब बड़े चिंतित थे, सब भेजेंगे ताकि वो जाके रघुनाथ दास का देखभाल करेंगे वहां पर। तो शिवानंद सेन ने कहा, आप डायरेक्ट ऐसे किसी को भेज नहीं सकते, अगले साल जब हम जाएंगे चातुर्मास में उस समय हम आपको ले जाएंगे। तो अगले साल चातुर्मास समय जब बंगाल के वैष्णव जगन्नाथपुरी आए तो उस समय कई नौकर और रसोई के लिए 2-3 ब्राह्मण भी आए और 400 सोने के सिक्के लेकर आए रघुनाथ दास के लिए। तो रघुनाथ दास ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं ये सब क्यों, मैं स्वीकार नहीं करने वाला हूं। फिर अंत में उन्होंने वो पैसे स्वीकार किए और एक वो जो ब्राह्मण था जो कि उनके लिए रसोई कर सकता है उनको साथ में रखा, लेकिन अपने आप के लिए उन्होंने वो एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि जब ये पैसा है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने निर्णय लिया, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए बड़ा फीस्ट दावत किया जाए, सबको प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद बांटा जाए, इस पैसे को खर्च करना था। लेकिन खुद वो नहीं खाते, खुद सिंह द्वार के बाहर खाके भिक्षा लेते। देखिए आदर्श भक्त कैसे होता है, दूसरों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाता है लेकिन खुद साधारण भोजन लेता है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास ने ये चालू किया और ऐसे लगातार 2 साल तक चला। और जब उनको पैसे की जरूरत होती, जब उनको फीस्ट देना होता तो नौकर से पैसे लेते, जितना चाहिए था उतना लेते, खर्च करते और बाकी पैसे ब्राह्मण के पास ही रहने देते, अपने पास कुछ पैसे रखते नहीं थे। इस प्रकार से 2 साल पूरे बीत गए और 2 साल बीतने के बाद 2 महीने अचानक रघुनाथ दास गोस्वामी ने कोई दावत नहीं बुलवाया तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे क्या बात है स्वरूप दामोदर, 2 महीने हुए रघुनाथ दास ने हमें प्रसाद के लिए बुलाया ही नहीं है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि रघुनाथ दास के मन में ये विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है? ये जो पैसे हैं ये एक विषयी व्यक्ति भोगी व्यक्ति का पैसा है और मैं विषयी लोगों का पैसा अगर लूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए ऐसे विषयी लोगों के पैसे से भक्तों को खिलाना ये भी अच्छा नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वीकार ठीक है लेकिन शायद केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा निमंत्रण वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं उदास हो जाऊंगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। नहीं तो हृदय से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं है। ये विचार रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में है ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत अच्छा, रघुनाथ दास अभी भक्ति में बहुत प्रगति कर रहे हैं, उनके सोचने का ढंग जो है वो और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, विषय अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन होइले नहीं कृष्ण स्मरण। विषयी व्यक्ति का अन्न अगर हम खाएंगे मलिन होय मन, हमारा मन मलिन हो जाता है, दुष्ट होय मन। दूसरी जगह चैतन्य महाप्रभु बताते हैं विषय अन्न खाइले दुष्ट होय मन, मन दुष्ट हो जाता है, नाना प्रकार के इंद्र तृप्ति के विचार आते हैं। मलिन मन होइले कृष्ण नहीं स्मरण, जब मन मलिन हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो हमेशा सावधान रहे कि वो कहां पर खा रहा है। इधर उधर जाके खाना नहीं चाहिए, बाहर होटल में इधर उधर, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कौन भोजन बना रहा है, उसकी चेतना क्या है। भोजन बनाने वाले की चेतना भी उस भोजन में आ जाती है और जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं फिर उसकी चेतना उस भोजन के माध्यम से हमारे चेतना के ऊपर प्रभाव करता है। और अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं है, विषयी है, भोगी है, तो उसका भोजन खाने से हमारा भजन नष्ट हो जाता है। तो भोजन और भजन में बहुत गहरा संबंध है, सावधानी से उसको काम लेना चाहिए। और भोजन भी कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दबा के मसाले, मिर्ची, तेल, एकदम राजसिक रजगुण का प्रसाद नहीं होना चाहिए। भगवान को अर्पण करते हुए भी हमें देखना चाहिए कि ये सात्विक हो, क्योंकि राजसिक भोजन से हमारा मन विचलित होता है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, केवल भक्तों के हाथों से बनाए हुआ होना चाहिए और भगवान को भोग चढ़ाकर बड़े प्रेम से वो प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से थोड़े दिन बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वहां सिंह द्वार पे दिखाई नहीं पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे स्वरूप दामोदर, अब सिंह द्वार पे भी मैं रघुनाथ दास को नहीं देख रहा हूं, क्या बात है? तो स्वरूप दामोदर कहने लगे कि अभी रघुनाथ दास यहां खड़े नहीं रहते हैं, वो वहां पर जाते हैं जहां जगन्नाथ मंदिर का एक स्टॉल है जहां सभी को प्रसाद देते हैं। जो भी वहां आता है लाइन में खड़ा होना होता है, सबको थोड़ा थोड़ा जगन्नाथ का प्रसाद देते हैं, वो वही लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रघुनाथ की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो व्यक्ति यहां सिंह द्वार पे खड़ा होकर कैसे खड़ा रहता है कि कौन आ रहा है, बुद्धि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भिक्षुक वहां खड़ा होता है वो हरेक आने जाने वाले व्यक्ति की परीक्षा करता है कि शायद ये व्यक्ति मुझे देगा, ये व्यक्ति ने कल नहीं दिया था आज भी नहीं देगा,
हाँ ये व्यक्ति, हाँ कल इसने दिया था, हो सकता है आज दे देगा। तो ये एक वृत्ति हो जाती है, बोलो ये वृत्ति अच्छी नहीं है वैरागी के लिए। तो जहां जाकर सबको प्रसाद मिल रहा है वहां से जाकर जितना मिलता है उतना लेके संतुष्ट रहना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के हर कदम में हां में हां मिलाया और बड़े प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रगति देखकर। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, रघुनाथ दास को एक बहुत महत्वपूर्ण भेंट दिया। हुआ यह था कि थोड़े साल पहले शंकर आनंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे और उन्होंने गोशीला लाई थी, गोवर्धन शीला, और साथ साथ एक गुंजमाला। ये गुंजमाला जो है श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है और ये जो गोवर्धन शीला है, गोवर्धन पर्वत तो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इस प्रकार से ये दोनों गुंजमाला और गोवर्धन शीला उस सन्यासी ने चैतन्य महाप्रभु को भेंट दिए थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे ये भेंट स्वीकार करके। तो वो गुंजमाला अपने गले में पहन लेते थे और वो गोवर्धन शीला भी अपने गले में कभी लटकाते थे, और कभी भी वो गोवर्धन शीला को कृष्ण समझकर जानकर कभी कभी अपने आंखों में लगाते थे, और अपने आंखों से जब वो कृष्ण के स्मरण में आंसू बहते थे तो गोवर्धन शीला गीला हो जाता था, तो कभी अपने सर से स्पर्श करते थे। इस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन शीला की पूजा लगातार 3 साल की। लेकिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने देखा, वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रघुनाथ को बुलाया और ये भेंट दिया, कहा कि रघुनाथ ये बहुत विशेष भेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये स्वीकार करो, ये गुंजमाला है और ये है गोवर्धन शीला। ये गोवर्धन शीला की बड़े ध्यान से आराधना करना, उपासना करना, सेवा करना, रोज रोज प्रातः काल में 8 तुलसी के फूल निकालना और हर एक फूल के साथ तुलसी के 2-2 पत्ते लगाना और जल अर्पण करना, और इस प्रकार से महामंत्र का जप करते करते शालिग्राम या गोवर्धन शिला की सेवा करते रहना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार किया और अपने आप को बहुत भाग्यवान समझा और उन्होंने बड़े हृदय से ये सेवा करना आरंभ कर दिया। और बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि रघुनाथ ये गोवर्धन शिला बहुत विशेष है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें भेंट दिया है, इसलिए ये गोवर्धन शिला को बहुत अच्छा भोग खिलाना चाहिए, तो हर रोज तुम ये संदेश अर्पण करना और साथ साथ खाजा, ये एक मिठाई है, ये अर्पण करना। जगन्नाथपुरी का बहुत प्रसिद्ध मिठाई है खाजा, आप जानते हैं खाजा? तो आप में से जो नहीं जानते हैं, अभी अक्टूबर में जब जगन्नाथपुरी की यात्रा होगी उसमें आप देख सकते हैं और चख के भी जान सकते हैं। लंबा सा होता है और बड़ा स्वादिष्ट होता है, जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा, हर रोज मैं तुम्हें संदेश और खाजा भिजवाऊंगा और तुम बड़े गोवर्धन शीला को अर्पण करना और इसकी पूजा करते रहना और ये तुम्हें अमृत के समान लगेगा। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने करना शुरू किया और वास्तव में आनंद के सागर में डूबते रहे गोवर्धन शीला की सेवा करते करते। और फिर मन ही मन सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये गोवर्धन शीला देकर वास्तव में गोवर्धन के चरण में आश्रय दिया है और मुझे ये गुंजमाला देकर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में आश्रय दिया है, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। इस रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा ऐसे चलती रही। थोड़े दिन बाद ऐसे हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के स्टॉल में भी दिखाई नहीं पड़े प्रसाद के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से पूछा कि अब उस रघुनाथ दास गोस्वामी कहां गया है, क्योंकि इतने सारे जगह बदल लिए थे, प्रसाद के स्थान बदल लिए थे। पहले चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद लिया था महाप्रसाद, फिर सिंह द्वार के बाहर थे, फिर बीच में फीस देते थे वो भी बंद कर दिया, फिर वो स्टॉल में जाते थे। अब स्टॉल से कहां गए? तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैं पता करता हूं। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग चढ़ता है जगन्नाथ जी को, बहुत सारा महाप्रसाद होता है और उसका वितरण भी बहुत बड़े मात्रा में होता है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि काफी कुछ प्रसाद रह जाता है, तो जो बिक नहीं जाता प्रसाद, फिर वहां के जो पंडा होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो भिक्षुकों को दे देते हैं, और जब उसके बाद भी प्रसाद रह जाता है तो उसको एक जगह वो डाल देते हैं, फेंक देते हैं, जहां गाय आके उसको खा लेते हैं। तो ऐसे जो गाय आके जो खा लेते हैं, वो जो बासा हो जाता है, सड़ जाता है जो प्रसाद, और जो गाय भी नहीं खाते हैं, और गाय कभी कभी खाकर फिर वो थूक देते हैं क्योंकि वो खाने योग्य नहीं है उनके लिए भी, तो उस स्थान में जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, थोड़े अनाज के दाने उठाते थे, चावल के दाने उठाते थे, उसको पानी से धोते थे और फिर वो चावल खाया करते थे छुप छुप के, कोई जानता नहीं था। स्वरूप दामोदर प्रभु गोस्वामी ने उनको पकड़ लिया और कहा कि अरे क्या खा रहे हो, क्या अमृत खा रहे हो रघुनाथ, मुझे दिखाओ दिखाओ। तो उन्होंने खाया और कहा कि रघुनाथ बहुत अमृत का सेवन कर रहे हो तुम। तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया। चैतन्य महाप्रभु आए वहां पर स्वरूप दामोदर के साथ और पकड़ लिया रघुनाथ गोस्वामी को। पकड़ लिया तुमको रघुनाथ गोस्वामी, हमने सुना है कि तुम अकेले में बहुत अमृत का पान कर रहे हो, अकेले में नहीं करना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, मुझे भी दे दो। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे तो कृष्ण भगवान ने कहा दे दो मुझे, क्या लाए हो मेरे लिए, भेंट लाए हो? तो सुदामा ने, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लाया। हाँ मुझे मालूम है कुछ लाए हो मेरे लिए, बहुत स्वादिष्ट वस्तु है। वो थैली में क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं दे दो दे दो दे दो। सुदामा तो बेचारे छोटे से ब्राह्मण थे, कमजोर थे, कृष्ण भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, उनको छीनना है तो कुछ छीन सकते हैं किसी से भी। तो उन्होंने छीन लिया वो पोहे, एक खा लिया और कहा वाह कितना स्वादिष्ट है, आज तक ऐसे मैंने कुछ व्यंजन नहीं खाया है। अब मैं समझ गया कि सुदामा जी के गुण क्या है। और जब और खाने वाले थे तो रुक्मिणी देवी ने थाम लिया उनका हाथ, नहीं नहीं बस 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 और मत खाइए, अभी एक कण खाट है कि इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों से भी इतना उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि रुक्मिणी देवी तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। तो जब उनके पति कृष्ण भगवान ने सुदामा का एक कण पोहा खा लिया तो रुक्मिणी ने सब ऐश्वर्य उस ब्राह्मण को, सुदामा विप्र को दे दिए। तो ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये एक कण खा लिया, कहा कि अरे वाह ये तो सारे ब्रह्मांड में सबसे स्वादिष्ट प्रसाद है, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद नहीं खाया, और खाने वाले थे। तो जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान का हाथ रोक लिया था, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का हाथ रोक दिया, कहा ठीक ठीक और नहीं बस 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 इतना बहुत हो गया। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन और वैराग्य को देखकर। कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी इसके बाद में केवल 2-3 दिन में एक बार कुछ आहार लेते थे, और वो भी अपने हाथों में थोड़े 5-6 बूंद छास पिया करते थे, बस 2-3 दिन में एक बार। और जब वो लेते थे अपने आप वो शर्मिंदा महसूस करते थे कि अरे मैं कितना समय बर्बाद करता हूं मेरी इंद्र तृप्ति के लिए, यह समय मैं भजन कर सकता था, भगवान की का स्मरण कर सकता था, जप कर सकता था, लेकिन मेरी इंद्र तृप्ति के लिए अब मैं छास पीने में कितना समय बर्बाद कर रहा हूं। और वो कपड़े पहनते, फटे हुए कपड़े, थोड़े इधर उधर नीचे सड़क पर गिरे हुए कपड़े, उसको धो डालते और तो वो पहन लेते, उसमें छेद, और ठंडी के समय थोड़े बहुत कंबल वगैरह पहन लेते जो फटे हुए थे, इधर उधर गिरे हुए थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहां देखी प्रीति होना गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में, उनके भक्तों में वैराग्य ये बहुत प्रधान चीज है, बहुत सरल होते हैं महाप्रभु के भक्त, इसलिए हमें भी ऐसे सरल होना चाहिए, सरल जीवन हमें बिताना चाहिए, महाप्रभु के अनुयायियों के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। यहां देखी प्रीति होना गौर भगवान, और इस वैराग्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। इस प्रकार से 16 साल पूरे रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, लेकिन उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रकट लीला समाप्त की, अपने धाम लौटकर चले गए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके विरह में रह नहीं पाए, उन्होंने भी प्राण त्याग दिया, वो भी भगवान के धाम में लौटकर चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय टूट गया, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण थे, अब दोनों नहीं रहे तो वो क्या करते। तो उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन में जाऊंगा, गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक चट्टान में जाकर वहां से कूदूंगा, मेरा प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अब मैं जी नहीं सकता हूं, मेरे लिए जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए। जब वहां पर उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखा तो उनके मन में थोड़ी शांति आई, थोड़ी आशा आई। उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्वयं रघुनाथ दास, मैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के संग में हूं। वही कृपा, वही भक्ति, वही करुणा, वही दृष्टि, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब रघुनाथ दास ने आत्महत्या करने की घोषणा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को की तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हमारे साथ में रहिए, हम दो भाई हैं, आप हमारे तीसरे भाई बनकर रहिए। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, शिरोधारी, आपकी जैसी इच्छा। फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए राधा कुंड में एक स्थान बनाया जो कि गोवर्धन के पास में है। अब ये राधा कुंड बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उपदेश अमृत नाम के ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये राधा कुंड सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबसे पवित्र स्थान है। ये स्वयं श्रीमती राधारानी के स्नान का कुंड है और ये राधा कुंड के पास श्याम कुंड है जो भगवान कृष्ण का कुंड है। श्याम कुंड, राधा कुंड। कहा जाता है कि गोवर्धन, ये एक मोर की दो आंखें, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी वहां निवास करने लगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु के समय तक किसी को पता नहीं था कि राधा कुंड श्याम कुंड कहां है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, आके इनको बिल्कुल ढूंढ निकालना ताकि आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो जाए राधा कुंड श्याम कुंड का। तो उन्होंने आके गोवर्धन के पास में दोनों श्याम कुंड और राधा कुंड को ढूंढ निकाला। उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड केवल दो छोटे से तालाब जैसे थे जो कि चावल के खेतों में थे और वहां सब किसान जो है वो कुछ चावल वगैरह उगाते थे वहां पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाके वहां पर रहने लगे तो उनको बहुत दुख हुआ ये देखकर कि वहां के लोग राधा कुंड का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उसमें जाके कपड़े धोते हैं, अपने बर्तन धोते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। तो रघुनाथ दास ने सोचा कि ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब करने के लिए हमें अलग एक कुआं होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा कुआं खोदने के लिए आदेश दिया। जब कुआं खोदा जा रहा था तो अचानक खोदते खोदते एक पत्थर आया और पत्थर को जब वो खोदते जा रहे थे तो वहां से खून निकलने लगा। तो खबर पहुंची रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो तुरंत रघुनाथ दास वहां गए, उन्होंने कहा कि अब खोदना बंद कर दो। उस रात रघुनाथ दास गोस्वामी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कहने लगे कि हे रघुनाथ, गोवर्धन और मुझ में कोई अंतर नहीं है, गोवर्धन मेरा शरीर है और गोवर्धन के अलग अलग जो भाग हैं वो मेरे अलग अलग अंग हैं, और ये जो पत्थर है जिसको आज तुमने खोदा है, जिससे खून निकला है, वो वास्तव में मेरी जिह्वा है, गोवर्धन की जिह्वा है। इसलिए इस पत्थर को बाहर निकालो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, और इसको एक मंदिर में स्थापित कर लो। फिर रघुनाथ गोस्वामी जागे और सुबह को सारे उस इलाके के निवासियों को बताया, और फिर उन्होंने वो पत्थर को निकाला और छोटा सा मंदिर वहां पे बना दिया। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं इस स्थान को आप देख, स्वामी ने वहां मंदिर की, छोटी सी मंदिर की स्थापना की है। और जब ऐसे ही भजन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी वहां बैठे, तो उन्होंने सोचा कि राधा कुंड जो इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, सबसे पावन स्थान पूरे ब्रह्मांड में, और ऐसे लगता है कि ये एक छोटा सा कुछ कुआं है, कुंड है, कुछ अच्छे ढंग से उसको बनाना चाहिए, घाट होने चाहिए, अच्छे तरह से इसका सजाना चाहिए, कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। फिर उनके मन में विचार आया कि अरे रे, अगर मुझे ये सब करना है तो मुझे जाकर फिर लक्ष्मी के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा, और शायद मैं अगर बाहर जाके पैसे इकट्ठा करने का प्रयास करूं तो मेरा भजन कम हो जाएगा और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जैसे है वैसे रहने दूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण वो तो सबके हृदय में विराजे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के विचारों को समझ गए। तो एक बहुत अद्भुत घटना हुई। एक व्यापारी थे, व्यवसायी, वो बद्रीनाथ की यात्रा में गए थे, लेकर वहां पर बद्रीनाथ जा रहे थे, और एक रात भगवान कृष्ण उस व्यापारी के सपने में आए और कहने लगे कि देखो, तुम दान यहां पर मत देना, ये धन ले जाओ, गोवर्धन जाना, वहां पर राधा कुंड के पास में रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के सन्यासी बैठे हैं, जो दिन रात बैठकर मेरा भजन करते हैं, उनको ये धन दे देना, और वो राधा कुंड का रिपेयर करना चाहते हैं, उसको बढ़िया बना, घाट अच्छे अच्छे बनाना चाहते हैं। तो वो व्यापारी वहां पर चले आए तुरंत, रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते ढूंढते थोड़ा समय लगा उनको ढूंढने के लिए, आखिर में ढूंढ निकाला, और रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान की कितनी असीम कृपा। केवल उन्होंने मन में इच्छा की थी कि मैं ये करना चाहता हूं भगवान की सेवा के लिए, राधा कुंड की महिमा का गौरव का वर्णन करने के लिए, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। जिन्होंने राधा कुंड को बड़े अच्छे ढंग से पत्थरों को सजा के घाट वगैरह बनाकर कुछ सुव्यवस्थित किया वहां पर, और आज तो राधा कुंड, श्याम कुंड काफी अच्छी तरह से लोगों ने बनाया हुआ है, आज भी हजारों की संख्या में लोग आके वहां पर स्नान वगैरह करते हैं। लेकिन इसमें और एक भी अद्भुत घटना हुई थी। जब घाट का काम चल रहा था, अचानक एक रात रघुनाथ दास गोस्वामी को और एक सपना आया, और उस सपने में कौन आए? युधिष्ठिर महाराज, पांडव। और उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि हे रघुनाथ, मैं और मेरे चार भाई, मतलब हम पांच पांडव, यहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में, तट में, हम वृक्ष के रूप में खड़े हैं, हमने हमारा पोशाक बदला हुआ है ताकि कोई हमें पहचान नहीं सके, हम यहां पे वृक्ष के रूप में हैं केवल राधा कृष्ण की लीला का दर्शन और स्मरण करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड सबसे पावन स्थान है सारे ब्रह्मांड में, इसलिए कृपया इन पांच पेड़ों को काटना नहीं, कि वो क्योंकि हम वो पांच पांडव हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उठकर फिर आदेश दिया, और इसलिए श्याम कुंड का आकार जो है वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि उसे वो पांच पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें वो आकार थोड़ा अलग सा करना पड़ा, और आज भी अगर हम जाएंगे तो वहां हम देख पाएंगे कि किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को आकार ऐसे बनाना पड़ा उन पांच झाड़ों को बचाने के लिए। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन करते रहे। कहा जाता है कि वो 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, कभी कम कभी ज्यादा,
और कभी 22 घंटे नहीं करते, 18 घंटे, 19 घंटे, लेकिन हर रोज 3 घंटे वो प्रवचन दिया करते थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इतना निकट का संग उनको प्राप्त हुआ था। और उस उन प्रवचनों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आके बैठा करते थे। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आ चुके थे, और जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा तो काफी कुछ जो जानकारी उनको मिली वो किताब लिखने के लिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रवचनों से मिली। चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं, उनके शिक्षाएं, उनके उपदेश इत्यादि। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान कृष्ण को दिन में 1000 बार कम से कम दंडवत करते थे, और वैष्णवों को कम से कम 2000 बार दंडवत करते थे रोज। देखिए, और उनकी साधना इतनी पक्की थी कि ऐसे बताया जाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, रघुनाथिर नियम यानो पाषाणेर रेखा। पाषाणेर रेखा मतलब एक पत्थर के ऊपर आप कोई लकीर बना दें तो वो मिट नहीं सकती है, उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना, कोई उनको डावाडोल नहीं कर सकता था। कभी भी अपने साधना से चूकते नहीं थे, अपने माला करना, दंडवत करना, परिक्रमा करना, भजन करना, इतने दृढ़ थे अपने संकल्प में, जैसे कि पत्थर में एक लकीर होता है, लाइन होता है। लेकिन जो नौसुखिया भक्त होता है उसके नियम पालन या उसके साधना कैसे होती है, जैसे रेती में एक रेखा, रेती में रेखा होती है, क्या होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर हवा आ जाता है, वो रेखा मिट जाती है। लेकिन हमें रघुनाथ स्वामी से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारी साधना, हमारा भजन कितना पक्का होना चाहिए, कितना दृढ़ होना चाहिए। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते रहे। वृंदावन के ठंडी में भी उनके पास एक केवल फटा हुआ एक कंबल था छोटा सा, और बाकी समय केवल एक छोटे से कौपिन में घूमते थे, छोटे से कपड़े पहनकर उतने में ही रहते थे, दिन भर भजन किया करते थे। भक्ति रत्नाकर नाम के ग्रंथ में दो बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है, संक्षेप में सुनाएं आपको, कहें आप, भूख लगी ज्यादा? तो एक बार सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने आए गोवर्धन राधा कुंड, और उनको आश्चर्य लग गया। उन्होंने बहुत अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? कि रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन में बैठे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, पास में थोड़े शेर हैं जो वहां राधा कुंड से पानी पीने के लिए आए हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं लाठी लेकर उनको उन शेरों से बचाने के लिए। सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। और एक बार जब सनातन गोस्वामी आए तो उनको और कि रघुनाथ दास गोस्वामी कड़क धूप में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है कि धूप है, बारिश है, क्या है, कुछ पता नहीं, शारीरिक भावना से बिल्कुल परे। और अद्भुत बात क्या थी इसमें कि स्वयं श्रीमती राधारानी अपने साड़ी से उनको छाया दे रही थी, और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता नहीं था, वो अपने भजन में मग्न थे और इस प्रकार से छाया में बैठे थे। तो सनातन गोस्वामी ने ये दो अद्भुत दृश्य देखे। फिर उन्होंने जाके रघुनाथ दास गोस्वामी को हल्के से डांटा, कहा कि देखो रघुनाथ दास, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, हमारा दर्शन नहीं है, राधा और कृष्ण से सेवा स्वीकार करना ये हमारा धर्म नहीं है, राधा कृष्ण को सेवा करना ये हमारा धर्म है, और तुम तो स्वीकार कर रहे हो उनसे सेवा, ये तो उचित नहीं है। इसलिए एक भजन कुटीर बनाओ, छोटी सी कुटिया क्यों ना हो, वो बना के उसमें रहो। फिर सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एक कुटीर बनाई, और फिर उसके अंदर बैठकर, छोटी सी थी, हमारे जैसे वो बंगला तो नहीं था, छोटी सी कुटिया, उसमें बैठकर रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन करते थे, फिर बारिश, ठंडी, गर्मी में वो सुरक्षित रहे। और उस समय से भजन कुटीर का सिस्टम चालू की पद्धति चालू हो गई,
आजकल जो अलग अलग बाबा जी हैं जो राधा कुंड वगैरह रहते हैं वो ऐसे भजन कुटीर में रहते हैं, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में ये चालू हो गया। तो जो रघुनाथ गोस्वामी हैं उन्होंने कई साल वहां निवास किया, वहां पर जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य उनका दर्शन किया करते थे। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस धरातल को छोड़कर भगवान के धाम चले गए तो जीव गोस्वामी गौड़ी वैष्णव समाज में प्रमुख आचार्य माने गए। तो जीव गोस्वामी भी रघुनाथ दास गोस्वामी का संग प्राप्त करने के लिए बार बार गोवर्धन राधा कुंड आया करते थे। और एक बार नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है जिनका नाम है जाह्नवा देवी, वो वृंदावन की यात्रा करने के लिए अपने भक्तों के साथ में आई थी। जब उन्होंने सुना जीव गोस्वामी से कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे रहते हैं और दिन भर कृष्ण के विरह में केवल रोते रहते हैं और कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, तो जाह्नवा देवी उनका संग प्राप्त करने के लिए अपने भक्तों के संग गोवर्धन आई। और वहां जब रघुनाथ दास ने उनका दर्शन किया, उन्होंने दंडवत किया, क्योंकि रघुनाथ दास के लिए जाह्नवा माता बहुत पूजनीय है, नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, और इस प्रकार से जाह्नवा देवी की कृपा उन्होंने प्राप्त कर ली। थोड़े से मैं वहां पर बातचीत किया, जाह्नवा देवी ने भी उनको थोड़ा आश्वासन दिया और फिर वो चली गई। एक बार ऐसे हुआ, थोड़ी पहले की बात है, कि रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ललित माधव, और इस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार से वृंदावन के निवासी और खास करके गोपियां कृष्ण के विरह में बहुत पीड़ित थीं। तो ये ग्रंथ को पढ़ के रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय टूट गया, दिन भर रोते रहते थे क्योंकि विरह को सहन नहीं कर पाए। और उनके जो साथ में भक्त रहते थे राधा कुंड में और जो भक्त हुआ करते थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए रघुनाथ दास गोस्वामी को सांत्वना देने के लिए, उनको शांत करने के लिए। आखिर खबर रूप गोस्वामी तक पहुंची तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, रघुनाथ दास को शांत कैसे किया जाए। तो उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दान केली कौमुदी, जिसमें उन्होंने गोपियों का और कृष्ण के मिलन की कथा लिखी, क्योंकि पहले किताब में विरह की बात थी, बहुत दुख की बात थी, अभी मिलन की बात लिखी। और बड़े चतुराई से आए रघुनाथ के पास कि रघुनाथ मैंने नया किताब लिखा है और जो पुराना किताब है ना उसमें थोड़ी गलतियां हुई हैं, मुझे गलतियां सुधारना है, तो वो किताब मुझे दे दो। तो ललित माधव किताब ले लिया और दान केली कौमुदी नया किताब दे दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पढ़ा, बहुत आनंद आया कि गोपियां और कृष्ण भी मिल गए और फिर खुश हो गए। और इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में हमेशा मग्न रहा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने आगे चल के राधा गोपीनाथ मंदिर उनका संपर्क रहा, क्योंकि वो प्रयोजन आचार्य कहलाते हैं। वैदिक दर्शन के तीन भाग हैं, एक को कहते हैं संबंध, दूसरे को अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। संबंध मतलब ये जानना कि हम जीवात्मा हैं, कृष्ण भगवान हैं और हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यह वैदिक ज्ञान का पहला कदम है, इसको संबंध कहते हैं। दूसरा स्थान है अभिधेय, मतलब किस तरह से भगवान की सेवा करना ये जानना, अलग अलग तरीके, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, यह है अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन, मतलब जो भगवान की सेवा करने से फल क्या मिलता है, कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति, वो प्रयोजन है। सनातन गोस्वामी इन्होंने खास करके संबंध ज्ञान दिया ज्यादा से ज्यादा, इसलिए वो संबंध आचार्य कहलाते हैं। रूप गोस्वामी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ऐसे ग्रंथों में अभिधेय इसके बारे में ज्यादा ज्ञान दिया, इसलिए उनको अभिधेय आचार्य कहते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रयोजन आचार्य कहलाते हैं, क्योंकि उनके जीवन से उनके शिक्षा से उन्होंने ये दिखाया कि भगवान कृष्ण की सेवा गोपियों के भाव में करने से क्या फल मिलता है, कृष्ण प्रेम का कौन सा स्वाद मिलता है, वो उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा करें कि हमें भी उनके भक्ति के सागर जो उनके हृदय में है उसका एक बूंद हमारे अंदर आ जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी का चिंतन इतना तीव्र था कि अपने चिंतन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते थे। एक बार ऐसे हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार पड़ गए और वहां पे वैद्य आए और वैद्य ने जब उनकी परीक्षा की तो वैद्य ने दूसरे भक्तों से कहा कि इनका अपचन हो गया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खीर खा लिया है। तो भक्तों ने सोचा कि मन ही मन में या तो ये वैद्य पागल है या तो ये बड़ा वैष्णव निंदा करने वाला आदमी है। उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो खाते हैं तीन दिन में एक बार, वो भी इतना सा दो बूंद छास लेते हैं, अभी खीर उन्होंने कितने साल हुए नहीं खाया क्या पता, वो तो कुछ खाते ही नहीं है तो अपचन होने की क्या संभावना है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, ये शायद ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरे ध्यान में श्रीमती राधा रानी ने मुझे एक खीर दिया, उनका महाप्रसाद, तो वो बहुत सारा खीर मैंने ध्यान में खा लिया था, तो शायद उसी वजह से मेरा अपचन हो गया। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जो हम चिंतन मनन करते हैं भगवान के बारे में वो भी इतना तीव्र है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, हम ऐसे चीज के बारे में नकल नहीं कर सकते, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना से हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमारी साधना में हमें पक्का रहना चाहिए, हमें हमारे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप ठीक से करना चाहिए, 4 नियमों का जप नियमों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, वैष्णव को देखने से प्रणाम करना चाहिए, कम से कम हसमुख चेहरे से हरे कृष्ण बोलना चाहिए, आके सत्संग में बैठकर प्रवचन सुनना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, प्रसाद बड़े आनंद से लेना चाहिए और वैष्णव अपराध से रहित मुक्त रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो अवश्य रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा हम सबके ऊपर आ सकती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। क्षमा कीजिए काफी देर हो गई।